Market Mantra. Good evening and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on mutual funds and matters related with them. The numbers to call us on are 2331-4444, 2342-1050, and 2331-0464. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra.
नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं, 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464। दिल्ली से बाहर के और मोबाइल से फोन करने वाले श्रोता इससे पहले स्टडी कोड 011 डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट स्नेहा सूरी। स्नेहा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
वार्म वेलकम स्नेहा।
थैंक यू।
पहले हेडलाइंस के साथ राजेश।
डोमेस्टिक मार्केट्स टू फोकस ऑन कॉर्पोरेट अर्निंग्स, इंटरेस्ट रेट डिसीजंस बाय यूएस फेड एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड ग्लोबल डेवलपमेंट्स फॉर क्यूज नेक्स्ट वीक। Foreign investors pump in over 4,000 crore rupees into the Indian equity markets in April, and global crude oil prices slump over 8% last week to end near $61 per barrel.
अगले सप्ताह देश के शेयर बाजारों का फोकस रहेगा कंपनियों की तिमाही आमदनी, यूएस फेड और बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा ब्याज दरों के फैसले और वैश्विक विकास के संकेतों पर। विदेशी निवेशकों ने अप्रैल में भारत के शेयर बाजार में 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया और पिछले सप्ताह विश्व बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 8% से ज्यादा गिरकर $61 प्रति बैरल पर पहुंची।
After rising for the three straight weeks, the market is likely to focus on the next lot of corporate earnings, US Federal Reserve and Bank of England interest rate decisions and slew of economic data next week. Last week, the Sensex jumped 1,289 points or 1.6% to end the week at 80,502, while the Nifty gained 307 points or 1.2% to end at 24,347 on Friday. The market will keep a close watch on the quarterly numbers to get the direction about FY26 earnings growth. About 285 companies will release their March 2025 quarter earnings, including key ones like Coal India, L&T, Mahindra, Titan Company, Asian Paints and Dr. Reddy's. Globally, apart from global trade deal developments, the focus will be on the Federal Reserve's interest rate decision due on May 7. The Bank of England will also hold its policy meeting on May 8. Back home, the fiscal deficit data for March will be released on May 5.
Delhi se ek shrota jud gaye hain, Sushil. Sushil, swagat hai aapka. Swagat. सुशील, अपने रेडियो सेट की आवाज कम कर ले।
हेलो
जी सुशील, अपना सवाल पूछे।
हेलो
जी सुशील, आपका स्वागत है।
सवाल पूछे सुशील।
एक्चुअली मुझे आपके आप लोगों की आवाज बहुत धीमे आ रही है, तो मैं आपसे मेरे छोटे छोटे दो सवाल हैं।
जी,
मैंने एक्चुअली 2023 में SBI के म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपया लगाया था, जिसे मैंने 2024 में प्रॉफिट समेत 8 लाख रुपया निकाल लिया था। अब 2 लाख रुपया बचा है और 2 लाख रुपया में लगातार नीचे आ रहा है उसका प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट तो छोड़िए 2 लाख से भी नीचे आ रखा है, तो क्या मुझे इस वक्त निकाल के दूसरा निवेश कर लेना चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए? इंतजार के अलावा क्या कोई और रास्ता भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से है तो कृपया जरा बताने की कोशिश करें।
जी सुशील जी, जैसे आपने बोला कि उसके बाद से आपका जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो प्रॉफिट नहीं जनरेट कर रहा है, दैट इज बिकॉज मार्केट का रुख अभी ऊपरी तरफ नहीं चल रहा है, काफी अनसर्टेनिटी चल रही है मार्केट में कुछ चीजों से, एंड यही मार्केट की वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है जिसके बारे में हम ट्राई करते हैं कि इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी को डील करने के लिए हम अपना पोर्टफोलियो ऐसा बनाएं जिसमें कुछ हमारा इक्विटी हो, कुछ डेट हो, हम धीरे धीरे मंथली इंस्टॉलमेंट्स में उसमें इन्वेस्ट कर रहे हों। बट आपने 2 बातें बताई, एक कि आपने लमसम डाला था, मैं आपको बोलूंगी कि आप जब अगली बार अपना ऐसे पोर्टफोलियो बना रहे हो आप मंथ ऑन मंथ डालिएगा, वो आपको ज्यादा बेहतर साइकोलॉजिकल बेनिफिट देगा। अभी जो आप कह रहे हैं कि इंतजार के अलावा अगर कोई वे आउट है, तो यहां पर मैं आपको बोलना चाहूंगी कि ऐसा वे आउट नहीं है। अगर ये पैसे अभी आपको नहीं चाहिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप उस अमाउंट को अभी इन्वेस्टेड रहने दें, क्योंकि अभी जो आपको एक तरीके का लॉस दिख रहा है या प्रॉफिट बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, वो अभी ऑन पेपर दिख रहा है एक तरीके से, ये बस अभी एक आप एक स्क्रीन पे ये देख रहे हैं, ये अभी आपका पक्का नहीं हुआ है। आप जैसे ही इसे रिडीम कर लेंगे तो वो लॉस आपका परमानेंट हो जाएगा, तो ज्यादा बेटर रहेगा कि हम अपना मार्केट को टाइम दे थोड़ा रिकवर करने के लिए। सो ही डिड नॉट रियली मेंशन द
फंड का नाम, नहीं बताया उन्होंने, बताया नाम बताया है एसबीआई।
हां जी,
तो स्नेहा जैसे आप बता रही हैं कि अगर अगले 2-3 साल तक इन पैसों की जरूरत नहीं है तो 2-3 साल तक इसमें बने रहिए
बिल्कुल,
क्योंकि एक साल पहले जो इन्होंने पैसे निकाले वो प्रॉफिट के साथ निकाले, तो हम मान के चलते हैं कि इन्होंने जिस फंड में लगाया होगा उसका परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही होगा।
बिल्कुल
जी।
फ्रॉम हरियाणा वी आर जॉइंड इन बाय मनोज, अ वार्म वेलकम मनोज, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
सर जी, मेरे बुजुर्ग ने जैसे कोई एमएफ या शेयर 10 रुपए में खरीदा हो
जी,
और नॉमिनी होने के नाते उनकी मृत्यु के बाद वह मुझे ट्रांसफर हुए, तब उसका एनएवी 100 रुपए था, तो इस केस में मेरी टैक्स लाइबिलिटी किस रेट के मुताबिक होगी? 10 रुपए के अनुसार होगी या 100 रुपए के अनुसार होगी, यानी कि मेरी खरीद वैल्यू क्या मानी जाएगी?
सर जहां तक मेरी नॉलेज है इस चीज पे, वो ये है कि जिस पे अक्वायर करा होता है कॉस्ट, जो आप 10 की बात कर रहे हैं, उस पे टैक्सेशन लगनी चाहिए। बट मैं आपको डेफिनेटली ये बोलना चाहूंगी कि आप अगर तो आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्ट करा हुआ है तो आप उनसे एक बार पूछिएगा या फिर आप एक टैक्स एक्सपर्ट से जरूर पूछिएगा।
जी, अगले कॉलर है मुंबई से रत्नाकर। रत्नाकर, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
हेलो, गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग,
मेरा सवाल है कि गोल्ड ETF ये क्या होता है और गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा है, और दूसरा सवाल है कि स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए SIP कर सकते हैं तो SIP वाला कौन सा फंड है कि वो जो स्टॉक में इन्वेस्ट हो जाएगा? ओके थैंक
जी। सो आपका जो पहला सवाल है कि गोल्ड ETF कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, वो बेसिकली आपको गोल्ड एग्जैक्टली जो गोल्ड का रेट चल रहा होता है मार्केट में, वो उसी पे आपको एक तरीके का उसी में इन्वेस्ट करके उसमें जो बढ़ोतरी हो रही होती है वो आपको ETF के माध्यम से मिल जाता है। ETF में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है, और एग्जैक्टली सेम आपको गोल्ड का जो प्राइस चल रहा होता है वो आपको फंड हाउस उसी में इन्वेस्ट करके आपको उसका रिटर्न दे देता है। मैं आपको यहाँ पे बस एक ये बात जरूर बोलना चाहूंगी कि अगर आप गोल्ड को इस वजह से देख रहे हैं क्योंकि आजकल हाल फिलहाल में वो काफी अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहा है, तो मैं बस ये बोलना चाहूंगी कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आप अपनी लिमिटेड रखिएगा, उसकी जो ये शॉर्ट टर्म रिसेंट इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे आप अपना सारा पैसा उसमें ना डाल दीजिएगा, और ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें पैसा डालिएगा। जो आप दूसरी चीज बोल रहे हैं कि स्टॉक में SIP कर सकते हैं, तो मेरी जानकारी इसमें यह है कि स्टॉक्स में क्योंकि हम डायरेक्टली एक्सचेंज पे जाकर लेते हैं तो हम उसे ऑटो पायलट नहीं कर सकते। SIP बेसिकली एक ये माध्यम हो जाता है कि जो फंड्स होते हैं आप उनमें वो जो कंपनी होती है फंड कंपनी, आप उन्हें बोलते हैं कि आप हर महीने या जैसे भी इतना अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट से इस फंड में इन्वेस्ट कर दीजिएगा, तो वो जो एक इंस्ट्रक्शन होती है वो एक ऑटोमेटिकली चलती रहती है। स्टॉक में ये तरीके का ओनरशिप आपके पास होती है कि आप हर महीने एक पर्टिकुलर डेट में उसमें धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करें। मैं आपको इस चीज पे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि आप ये समझना चाह रहे हैं कि स्टॉक्स में भी तोड़ तोड़ के इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप ये खुद से करने का ट्राई करिएगा।
इट इज सेड दैट वन शुड होल्ड 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो इन गोल्ड और ETF। हाउ ट्रू इज दैट?
सो एक्चुअली दैट 10% the said argument that 10% can be invested is purely basis the fact that it acts as a hedging tool. As of now, many people believe that gold may not be and actually not, it is not basis the belief. Actually what has happened is that gold has always played a role when the markets have been down. So market goes in red and gold shines at that time. That has been the case historically. But because of the kind of geopolitical developments that we have been seeing for the last 1-2 years, gold from a non-productive asset class, since it only plays on demand and supply and no economic basis. So because of that, while it was non-productive, it has actually become a performing asset class, which has put this kind of a 5-10% limit on kind of a spotlight that everybody wants to get some exposure. And it is not bad, a modest 5-10% allocation to an asset class which actually helps protect your wealth. So
yesterday we had an expert with us, and he said that don't invest in ornaments and all, instead go in for a brick or gold coins, etc., or ETF.
Right. So in my humble opinion, ETFs would be a better way to invest in it, just simply because you are able to, one, reduce the storage costs that are there in those physical ways of holding gold. The other, just the psychological benefit that the gold ETF I am owning is kept with the AMC and not in your bank account, which will always keep you worried.
Okay, joining us from Faridabad, we have Subhash now. Subhash, a warm welcome. Subhash, can you hear us?
Namaskar.
Namaskar, Subhash. Apna sawal puchhe.
Hello.
Ji, Subhash, apna sawal puchhe.
Sir, main ye puchna chahta tha ki mera hai na equity fund mein aur hybrid fund mein investment hai, mujhe paise ki zarurat thi, to main equity fund se direct main account mein transfer kar sakta hu ya fir pehle usko hybrid fund mein transfer kar lu aur uske baad fir usko अपने अकाउंट में कौन सा सिस्टम ठीक रहेगा सर, जिससे कि मुझे तो टैक्स में कुछ जो लॉन्ग टर्म ग्रीन टैक्स है जो उसमें कुछ मतलब ठीक रहेगा?
जी सुभाष जी, पहले तो इस पे डिपेंड करता है कि आपने कितने टाइम से इन्वेस्ट करा हुआ था और आपका जो हाइब्रिड फंड है वो कौन सी टैक्सेशन में फिट इन होता है। अगर तो आप इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स में ही हैं तो फिर आप अपने इक्विटी फंड से निकालिए या फिर इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड से निकालिए, टैक्स लाइबिलिटी सेम रहेगी।
जी अगले कॉलर हैं बिहार से टिंकू रॉय, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
नमस्ते सर।
नमस्कार,
मैं टिंकू राय बेगूसराय जिला बिहार से बोल रहे हैं।
जी बताइए
सर। मैं SBI लाइफ इंश्योरेंस में जो है SBI जो बैंक है उसमें म्यूचुअल फंड कराने चाहते हैं, तो सर कैसे कैसे होगा ये जानकारी चाहिए हमें।
जी टिंकू जी, जैसे आपने बोला कि आप अपने बैंक अकाउंट के थ्रू करना चाहते हैं, तो आप अपने बैंक में अप्रोच करके बिल्कुल उनको बता सकते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और अगर तो आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है तो मैं आपको बोलूंगी कि आप अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स चुनिएगा। ज्यादा बेहतर ये रहता है जब हम बैंक में जा रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट वहां से करने के लिए, तो यूजुअली बैंक्स हमें कोई और प्रोडक्ट्स भी कभी कभार ऑफर कर देते हैं, वो बता देते हैं कि इसमें बेनिफिट ज्यादा रहेगा। तो ज्यादा बढ़िया रहता है अगर फंड आपको पता हो और आप उन्हें बोलें कि आपको इसी में इन्वेस्ट करना है, ताकि वो कोई और प्रोडक्ट आपको सेल ही ना करें। तो बट क्योंकि ये जानकारी अभी मुझे है नहीं कि आप किस टाइप के फंड में करना चाह रहे हैं, बट मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं और आप थोड़ा इक्विटी एक्सपोजर चाह रहे हैं, तो आप इक्विटी हाइब्रिड अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स देख सकते हैं। जैसे ICICI के अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, SBI का भी अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, तो आप ये नाम उनको बता सकते हैं।
जी अगले कॉलर है गाजियाबाद से गौरव। गौरव स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
नमस्ते मार्केट मंत्र टी।
नमस्कार,
मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ।
जी
मेरा सवाल है सर ये, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वेरीफाइड KYC एंड अ रजिस्टर्ड KYC, सबको वेरीफाई कराना जरूरी हो गया है. अब लंबे इन्वेस्टर हैं इसलिए हमें डर लगता है कहीं ये लोग रोक ना दें हमारा रिडेम्पशन वगैरह. और दूसरा सवाल, जो पैसा हमारा पहले गया था आज से 10 साल पहले, दैट मनी हैड अर्लियर गिवन अ रिटर्न ऑफ CAGR 19% प्लस, इट हैज कम डाउन टू 15% टेपर्ड. सो व्हाट इज योर एज अ स्पेशलिस्ट शुड वन शुड कीप एन एक्सपेक्टेशन फॉर एन SIP व्हिच इज गोइंग नाउ 5 to 10 years फ्रॉम नाउ, व्हाट शुड बी एक्सपेक्टेशन ऑफ CAGR इन लॉन्ग टर्म, से 5+ years? थैंक यू.
Right. So taking your second question first, Gaurav, you mentioned that you were seeing that 19% plus kind of a CAGR, let's say of investments which were invested some time back. If I'm not wrong, you mentioned 5 to 8 years back. And now you're saying that it has come down to 15% plus. And actually, that's the market unpredictability. And since you would have invested for this kind of a long period, you would have already seen this 19% plus also going down to, let's say, a 12%, 10% kind of a return. So, there cannot be any kind of, future predictability of the fact that how much of your SIP can generate in terms of CAGR. Usually, equity market, investment in equity market, because Sensex, historical data shows that a 12% kind of a CAGR can be an expected value at all times, provided you stick through those ups and downs that equity market throws you. So I would say that you should continue investing and maintaining an asset allocation whenever required, shift from equity to debt, debt to equity, so that your money actually helps you when you need that money to work for you actually. The first question that you mentioned, my knowledge is limited there.
इसके बारे में शायद हम अगले हफ्ते बेहतर जानकारी दे पाएंगे. चले अगले कॉलर के पास, राजेश.
Yeah, Kapil from Mumbai joins us now. Kapil, a warm welcome.
Yeah, thank you. Good evening, Market Mantra.
Good evening.
मेरा क्वेश्चन है, एक्चुअली मैं आई वांट टू यू नो स्टार्ट सिर्फ 5,000 rupees पर मंथ. For a longer period, can I invest in a gold fund? Something is there in the market, gold fund mein lagaye, aur long term ke liye, at least 5 years ke liye. So, mere ko thoda guide diye, agar lagana hai, to kaun se fund mein lagana hai gold ke liye? Thank you.
Gold sabko bula raha hai.
बिल्कुल. सो आई होप कपिल, आप इक्विटी और डेट जो एसेट क्लासेस होती हैं उनमें सफिशिएंटली इन्वेस्टेड हैं, एंड यू आर ओनली लुकिंग टू इन्वेस्ट इन गोल्ड बिकॉज ऑफ कोर्स द काइंड ऑफ रन अप इट हैज सीन. बट आई वुड फर्स्ट ऑफ ऑल से दैट यू नो फॉर योर लॉन्ग टर्म गोल्स, इन्वेस्टिंग इन इक्विटी फॉर द लेट्स से 5+ years काइंड ऑफ गोल्स and investing in debt for 1 to 3 years or emergency kind of purposes should be the priority. And then coming down to, let's say, a 5 to 10% kind of a modest allocation to gold can definitely be looked at. And while in the market, SGBs have been the best way to get this kind of an exposure, but due to the kind of run-up we have been seeing in gold, SGBs have not been coming out. They have not. The government has not been issuing these SGBs. So the second best alternative actually becomes gold ETFs or gold FOFs. The only difference being that in case of an FOF, you do not need a DMAT account and you can also set up an SIP. So if, let's say, if I need to mention a few funds to you, then you can look at Axis Gold ETF, both ETF and FOF structure, and HDFC funds can also be looked at.
SGBs will not be there now. From the government,
right,
is
seems like
they will not. Yeah. Mohit from Delhi is with us. Mohit, a warm welcome.
हाँ नमस्कार सर
जी, सवाल पूछे.
ऐसा सर, सर मैं अभी पिछले 5-6 साल से करीब अलग अलग 5-6 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट है मेरा, और अभी लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस है वो इतना सेटिस्फेक्ट्री नहीं है. अब मेरे को फर्दर मैं 1,00,000 रुपया लगाना चाह रहा हूँ 10 से 12 साल के लिए, लमसम इन्वेस्टमेंट. मैं SIP नहीं करना चाह रहा, मैं लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ. तो मैं चाह रहा हूँ कि एक बार आप अपनी तरफ से मेरे को कुछ 3-4 अच्छे म्यूचुअल फंड
सजेस्ट
कर दें जो कि अच्छे रिटर्न दे सके अगले 10-12 साल
बाद. जी मोहित जी, आप काफी टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपने मार्केट्स के अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, जैसे मैं पहले बता रही थी श्रोता को. अभी जो आप कह रहे हैं कि आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप SIP नहीं करना चाहते, तो दैट इज अ कॉल दैट depends upon you only entirely. However, I would like to mention that SIP ज़्यादा बेहतर way रहता है ताकि ये जो current market का phase आप देख रहे हैं थोड़ा सा volatile type सा, ये better manage हो पाता है जब हम investment करने जा रहे होते हैं. आपने बताया कि आपके पास कुछ funds पहले से ही हैं, उन funds की आज आपको performance उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही होगी, but जब से आप invest कर रहे हैं अगर वो funds अभी भी ठीक ठाक रिटर्न आपको दे रहे हैं तो आप उनमें डेफिनेटली इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. बिकॉज हैविंग 5 to 6 फंड्स इज एक ऐसा पोर्टफोलियो बन जाता है कि आप उसको मॉनिटर कर पाते हैं, आप इंटरेस्टेड रहते हैं, आप एक कलेक्टर ऑफ फंड्स नहीं बनते. अगर फिर भी आप लंबे समय के लिए कर रहे हैं, मैं बस ये बोलूंगी कि आप इक्विटी एसेट क्लास में करिएगा. और अगर आप अपना कोर इक्विटी पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं तो डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज जैसे कि फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, वैल्यू ओरिएंटेड या फिर जो मल्टी कैप कैटेगरीज है आप उनको देख सकते हैं. अपनी आपके पास जो अगर इन कैटेगरीज में से फंड्स है आप उनमें इंक्रीमेंटली इन्वेस्ट कर सकते हैं. कुछ नए फंड्स अगर आप फिर भी जानना चाहेंगे तो मैं आपको 2-3 फंड्स बता सकती हूँ. जैसे आप HDFC का फ्लेक्सी कैप, फ्रैंकलिन का फ्लेक्सी कैप, SBI का फोकस्ड फंड, कोटक का इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, ऐसे टाइप के डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज देख सकते हैं.
जी, अगले कॉलर हैं दिल्ली से पंकज. स्वागत है पंकज, सवाल पूछें.
मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार.
नमस्कार
सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे हम जो हमारा पर्सनल इनकम होता है तो जो टैक्सेशन होगा जो शेयर और म्यूचुअल फंड से जो हमारी अर्निंग होगी या शॉर्ट टर्म से या लॉन्ग टर्म से वो हमारे इनकम के हिसाब से काउंट किया जाएगा या इसका डिफरेंट वो बनाया जाएगा. दूसरा सवाल ये था सर कि अगर हम अपने HUF अकाउंट से ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें शेयर ये जो अर्निंग होगी वो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए और उसमें कितना रिलैक्सेशन है. थैंक यू.
ज्यादा सवाल ये टैक्स से जुड़े हुए हैं मुझे लगता है म्यूचुअल फंड्स की बजाय, तो हम जब टैक्स के एक्सपर्ट आएंगे तो हम इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे. फिलहाल अगली खबर पे चलते हैं. इस वर्ष जनवरी से मार्च तक भारतीय शेयर बाजार से लगातार पैसे निकालने के बाद अप्रैल में विदेशी निवेशकों ने 4,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया. ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में उन्होंने देश के शेयर बाजार में 4,223 करोड़ रुपए का निवेश किया, लेकिन पिछले महीने उन्होंने देश के ऋण बाजार से 13,314 करोड़ रुपए निकाल लिए. विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से मार्च में 3,973 करोड़ रुपए, फरवरी में 34,574 करोड़ रुपए और जनवरी में 78,027 करोड़ रुपए निकाले थे.
Good evening to Market Mantra team.
Good evening.
I would like to know from the expert that I have 1 lakh rupees in PF, in my PF fund. So now I am not getting PF. So what to do with this fund? Should I withdraw this fund or should I keep it for next 5 years? And shall I earn the interest or is it remain as it is? And suggest me some good ELSS fund and conservative hybrid fund. These are my 2 questions. Thank you.
So he has PF lying with him. He wants to invest that. Should he withdraw that and invest somewhere?
Right. So PF is something that provides you with, if you're talking about, let's say, public provident fund, that is something that gets you fixed income kind of a return, although it is a very lucrative इंस्ट्रूमेंट टू इन्वेस्ट इन, क्योंकि वो आपको ईईई स्टेटस देता है. कुछ टैक्सेशन उसमें नहीं आती है, जो आपका इंटरेस्ट भी होता है उसमें. अगर आप ये पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इक्विटी एसेट क्लास में देख सकते हैं. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप इसी के लिए ELSS फंड्स भी जानना चाह रहे हैं कि कौन से बेहतर रहेंगे. तो ELSS फंड्स मैं आपको 2-3 नाम बता देती हूँ. आप पराग पारिक का ELSS फंड देख सकते हैं, बंधन ELSS टैक्स सेवर फंड देख सकते हैं, इन्वेस्को का भी ELSS टैक्स सेवर फंड आप देख सकते हैं. आपने मेंशन करा कि आप कुछ अच्छे कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं. सो कंजर्वेटिव हाइब्रिड मैं आपको एक बार बस बताना चाहूंगी, ये वो वाले फंड्स होते हैं जो आपका अराउंड 25% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, बाकी सारा ये डेट हैवी इन्वेस्टमेंट बन जाती है. तो आप मैं आपको 2 कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड सजेस्ट कर सकती हूँ, एक ICICI प्रूडेंशियल का और एक कोटक का कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड.
मूविंग ऑन, द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस स्लम्प्ड ओवर 8% लास्ट वीक to register its biggest weekly losses since the end of March. Brent crude oil futures plunged 8.6% last week to end at $61.19 a barrel, while the U.S. crude declined about 8% to $58.13 a barrel. OPEC Plus has agreed to boost oil production by 411,000 barrels per day in June, marking the second month in a row of increased output. This decision comes despite falling oil prices and concerns over weakening demand. Oil prices dropped to a four-year low in April, dipping near $60 per barrel. This was due to larger than expected production increases and growing global economic worries, especially after new U.S. tariffs. Saudi Arabia is reportedly pushing for faster production increases to penalize Iraq and Kazakhstan for not sticking to agreed output limits. The decision also follows pressure from U.S. President Donald Trump, who urged OPEC Plus to raise production ahead of his visit to Saudi Arabia later this month.
अगले कॉलर हैं दिल्ली से महेश. महेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
गुड इवनिंग टीम. सी लास्ट वीक व्हेन आई आस्क फॉर द सम हाइब्रिड एक्चुअली इन्वेस्टमेंट आई वाज सजेस्टेड आईसीआईसीआई इक्विटी डायरेक्ट मेरा एसेट हाइब्रिड एज वेल एज दी डीएसपी ब्लैकरॉक. सो मेरा ये पूछना था कि व्हाट इज द इज देयर एनी ओवरलैप बिटवीन दीज थ्री फंड्स. What is the overlap in the all these three funds, and what is the permissible over limit between the funds?
So Mahesh, generally in any kind of a category, you'll definitely find some kind of overlap in the portfolio, and that is because each and every fund is kind of looking and picking opportunities from the same market. Usually, with aggressive hybrid funds, what happens is that BSE 500. Which caters to the entire large cap stocks, mid cap stocks, as well as small cap stocks up to 250 that are there in the market. So there is bound to be some overlap since BSE, their benchmark becomes BSE 200 or 500. And there is actually overlap between sectors as well. Generally, when, looking at investing your hard-earned money, it is suggested to invest or, let's say, diversify across at least two AMCs, because you'll then not be subjective to one AMC's, let's say, style of investing or something that happens at an AMC level that will not really bother your portfolio as such.
Joining us now is Suresh from Delhi. A warm welcome, Suresh. What's your question?
मार्केट मंत्री टीम को मेरे गुड इवनिंग.
गुड इवनिंग
मैडम. मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मैं एक सीनियर सिटीजन हूं और मैंने अपना पिछले 10-15 सालों से इक्विटी और इक्विटी हाइब्रिड अग्रेसिव फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है. अब मुझे 50,000 रुपीज पर मंथ का एसटीपी करना है, तो क्या मुझे इक्विटी फंड से ही एसटीपी करना चाहिए या पहले इसको फंड्स को डेट में कन्वर्ट करके उसमें से.
सो क्या व्हाट डू यू वांट टू सजेस्ट.
मैं शायद ये समझ नहीं पाई, आप कह रहे हैं कि आप हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं,
उनको एसटीपी करना है, तो वो किससे करना शुरू करें?
सो ज्यादा बेहतर रहता है कि आप अपना लमसम पैसा किसी डेट काइंड ऑफ फंड में डालें, जैसे लिक्विड फंड्स जो होते हैं उनमें से आप एसटीपी करके अपने अकाउंट किसी और फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रहता है. बट मैं आपको कहना चाहूंगी आप अगली बार फिर से कॉल करिएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन पूरी तरह मैं क्लियर नहीं समझ नहीं
जी. आज वक्त इतना ही है स्नेहा मार्केट मंत्र में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद.
थैंक यू स्नेहा फॉर बीइंग विद अस. एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, डोमेस्टिक मार्केट्स टू फोकस ऑन कॉर्पोरेट अर्निंग्स, इंटरेस्ट रेट डिसीजंस बाय यूएस फेड एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड, एंड ग्लोबल डेवलपमेंट्स फॉर क्यूज नेक्स्ट वीक. Foreign investors pump in over 4,000 crore rupees into the Indian equity markets in April, and global crude oil prices slump over 8% this week to end near $61 per barrel. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra. Market Mantra.